11 अक्टूबर शुक्रवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। तुर्की की सैन्य कार्रवाई की वजह से सीरिया से हजारों लोगों का पलायन।
People are trying to get out of the town because people just don't want to repeat the same tragedy.
चीन के राष्ट्रपति का भारत दौरा आज से होगा शुरू। मामल्लपुरम में भारतीय प्रधानमंत्री से होगी मुलाकात। हत्या के विरोध में बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन। चर्चा होगी महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों की।
इतने लोगों ने कहा भाई सब दो नंबर का पैसा नहीं है, मैं कैसे पॉलिटिक्स में आऊंगा, साधारण मिडिल क्लास का व्यक्ति हूँ। हाँ, अगर आप 5-10 लाख रुपया कहीं से अरेंज कर दो तो हम इलेक्शन लड़ लेंगे।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की के हमले के बाद सेना ने कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया है। तुर्की की सेना ने रास अलेन और तेल अबियात के सीमावर्ती इलाकों को घेर लिया है। माना जा रहा है कि तुर्की इन दो इलाकों पर कब्जा करना चाहता है ताकि जमीन पर लड़ाई से बचा जा सके। बताया जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा लोग यहां से पलायन कर चुके हैं और कुर्द लड़ाकों के अनुसार 9 नागरिक मारे गए हैं। ईरान में 4 दशकों के बाद पहली बार महिलाओं को फुटबॉल मैच देखने की इजाज़त दी गई है। कंबोडिया और ईरान के बीच हो रहा ये मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं स्टेडियम पहुंची। इस्लामी क्रांति के बाद से महिलाओं के फुटबॉल स्टेडियम में आने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ने ईरान से इस प्रतिबंध के लिए प्रतियोगिता से बाहर करने की चेतावनी दी थी। महिलाओं पर लगे प्रतिबंध का मुद्दा तब चर्चा में आया था जब एक ईरानी महिला को लड़का बनकर फुटबॉल स्टेडियम में जाने पर सजा के डर से आत्महत्या करनी पड़ी थी। फुटबॉल मैच देखने पहुंची एक महिला ने कहा कि ये गलत है कि महिलाओं को फुटबॉल देखना पसंद नहीं है।
There has been rumors that women are not even interested in football. They don't like to go.
इस तरह की अफवाहें हैं कि महिलाएं इसलिए मैच देखने नहीं जाती क्योंकि उनकी फुटबॉल में दिलचस्पी ही नहीं है। हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी भी इसमें दिलचस्पी है और अगर हमें जाने का अधिकार हो तो ये दिलचस्पी पुरुषों से भी ज़्यादा हो सकती है। ये महिला या पुरुष होने का मसला नहीं है, इसलिए हम एक संदेश दे रहे हैं। ये थे एक फुटबॉल मैच देखने गई एक ईरानी महिला के शब्द। आयरिश प्रधानमंत्री लियो वरादकर ने कहा है कि अक्टूबर के अंत तक ब्रेक्जिट समझौता हो सकता है। लियो वरादकर ने उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ हुई बातचीत को बहुत सकारात्मक और आशाजनक बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी समझौते में आयरलैंड में सीमा शुल्क से बचना चाहिए और उत्तरी आयरलैंड में लोकतांत्रिक समर्थन को स्वीकारना चाहिए। लियो वरादकर के रुख पर एक आयरिश प्रसारक आरटीई के यूरोपीय संपादक टॉनी कॉनोली कहते हैं कि वो समझौते की तरफ सकारात्मक संकेत देते हुए दिखे लेकिन अपनी शर्त से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हम आयरलैंड पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाने पर जोर दे रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आयरलैंड की अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा। आयरिश प्रधानमंत्री ने अपनी शर्तें बनाए रखी हैं। ये थे आरटीई के यूरोपीय संपादक टॉनी कॉनोली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोवियत मूल के दो अमरीकी राजनीतिक चंदा देने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो देश छोड़कर जाने वाले थे। ये दोनों अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील रूडी जुलियाने से भी जुड़े रहे हैं। लेव पार्नस और इगोर फ्रूमैन नाम के ये दोनों अमरीकी राजनीतिक उम्मीदवारों को विदेशी पैसा देने का आरोप लगा है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों ने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के परिवार की जांच करने के प्रयासों में रूडी जुलियाने की मदद की थी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कोलंबिया को वामपंथी गुरिल्लाओं को समाज में फिर से बसाने और सुरक्षा की गारंटी देने की ज़रूरत है। सुरक्षा परिषद में शांति प्रक्रिया की समीक्षा में कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ने कहा कि बोगोटा की सरकार 2016 में फार्क विद्रोहियों के साथ हुए शांति समझौते में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि कई पूर्व कमांडर्स ने फिर से हथियार उठा लिए हैं। ब्रिटेन की एक टेक्नोलॉजी कंपनी डायसन ने घोषणा की है कि उसने एक इलेक्ट्रिक कार बनाने के $3 अरब के प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। सीरिया से खबरें मिल रही हैं कि तुर्की की सैन्य कार्रवाई की वजह से इलाके में रहने वाले हजारों लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें डर इस बात का है कि तुर्की की इस कार्रवाई की वजह से 4 साल पहले की तरह हालात पैदा हो सकते हैं, जब इलाके में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों का दबदबा था। नेटो ने तुर्की से संयम बरतने के लिए कहा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मटेनी से।
अंतर्राष्ट्रीय जगत में बीते 2 दिन से तुर्की चर्चा में बना हुआ है, जिसने अपने पड़ोसी देश सीरिया के खास हिस्से में पहले हवाई हमला और फिर जमीनी कार्रवाई शुरू की है, जो लगातार जारी है। तुर्की सीरिया में कुर्द लड़ाकों को निशाना बना रहा है, जिन्हें वो चरमपंथी मानता है। इस कार्रवाई की वजह से सीरिया के उत्तरी इलाकों से 60,000 से अधिक लोगों के घर बार छोड़कर भागने की खबरें मिल रही हैं।
People are trying to get out of the town because this place was...
तुर्की सीरिया के सीमावर्ती इलाके में मौजूद ये महिला कह रही थी कि लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही वो जगह है जिसे 4 साल पहले इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने कब्जे में ले लिया था। इस बार जिन्होंने हमला किया है वो इस्लामिक स्टेट से अलग नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनके पास वैधानिक सेना है। ये थे तुर्की सीरिया सीमा पर मौजूद एक महिला के शब्द। कहा जा रहा है कि तुर्की की फौज ने कुर्द लड़ाकों के नियंत्रण वाले कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। कुर्दों का कहना है कि तुर्की की इस कार्रवाई में आम लोग भी मारे जा रहे हैं। इराकी कुर्दिस्तान के सुलेमानिया में मौजूद पेशे से डॉक्टर जाविदन कमाल कह रहे थे कि तुर्की ने राष्ट्रपति अर्दोगान के नेतृत्व में सीरिया के उत्तरी और पूर्वी इलाकों पर जो हमला किया है वो यहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को आज़ाद कराना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। इस घटनाक्रम पर नेटो ने तुर्की के राष्ट्रपति से संयम बरतने के लिए कहा है।
I count on Turkey to show restraint and to ensure that their actions in northern Syria.
नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग कह रहे थे कि तुर्की को संयम बरतते हुए सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कार्रवाई सीमित इलाके में हो। तुर्की की इस कार्रवाई से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई से मिली बढ़त को धक्का पहुंच सकता है। दूसरी ओर तुर्की का कहना है कि वो कुर्द लड़ाकों को हटाकर एक सेफ जोन तैयार करना चाहता है, जहां लाखों सीरियाई शरणार्थी भी रहते हैं। तुर्की ने इस कार्रवाई की योजना पहले से बनाकर रखी थी, लेकिन इस पर अमल तब किया जब अमरीकी राष्ट्रपति ने इलाके से अमरीकी सैनिकों को वापस बुला लिया। इलाके में कुर्दों के नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमरीका की अहम सहयोगी रही है, लेकिन तुर्की इन कुर्द लड़ाकों को चरमपंथी मानता है। अमरीका में ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाकर तुर्की को इस कार्रवाई के लिए एक तरह से हरी झंडी दिखाई थी। एसडीएफ का मानना है कि उन्हें पीठ में छुरा घोंपा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा था कि वो सीरिया के अंतहीन युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि तुर्की ने यदि अपनी हद पार की तो उसे कड़े वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने ये कहते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव किया है कि इसे यदि कब्जा कहा गया तो वो उस इलाके में मौजूद सीरियाई शरणार्थियों को यूरोप भेज देंगे।
रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज भारत आ रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के नज़दीक मामल्लपुरम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात तय है। दोनों नेताओं की ये अनौपचारिक मुलाकात
हरे 5,000 पुलिस
द्विपक्षीय संबंधों के हिसाब से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट में।
हरे 5,000 पुलिसकर्मी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर मामल्लपुरम में तैनात किए गए हैं ताकि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लें। दोनों नेता मामल्लपुरम में मिल रहे हैं, जिसकी अहमियत कुछ और ही है। चेन्नई के अलगप्पा विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर एस राजवेलु ने बीबीसी को बताया कि मामल्लपुरम और चाइना का रिश्ता करीब 2,000 साल पुराना है। पल्लवा राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी और मामल्लपुरम बंदरगाह का नगर था। बौद्ध भिक्षु सुसांग मामल्लपुरम आए थे और कांचीपुरम के बौद्ध मठों का दौरा किया था। इसके काफी ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूत भी है। उसके बाद से मामल्लपुरम चाइना के जहाजों के लिए एक अहम बंदरगाह बन गया था। ये थे प्रोफेसर एस राजवेल्लो के शब्द। 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भी मामल्लपुरम का दौरा किया था, लेकिन आज की परिस्थिति में मामल्लपुरम का महत्व इसलिए अहम है क्योंकि भारत और चाइना के रिश्तों में एक तरह की ठंडी आ गई है, खासकर पिछले दो दिन से जब राष्ट्रपति शी एक बयान में कहा था कि चाइना पाकिस्तान को कश्मीर के विषय पर समर्थन देगा। ये बयान राष्ट्रपति शी ने तब दिया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बीजिंग पहुंच गए थे मामल्लपुरम की बैठक के दो दिन पहले। इस पर पूर्व राजनयिक एन एन झा ने बीबीसी को बताया,
पहले बार जो था वुहान में उससे तो वो काफी अच्छी दिशा में जा रहा था, वो उसका नतीजा हो रहा था, लेकिन
झा को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कर देंगे कि कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी मामला है जिसमें कोई दूसरा देश दखल नहीं दे सकता है। ये थे एन एन झा के शब्द। अगले दो दिनों में ये स्पष्ट हो भी सकता है कि भारत और चाइना के रिश्ते फिर वुहान भावना के रास्ते पर चल सकते हैं या नहीं, और क्या कश्मीर मामले के बावजूद रिश्ते आर्थिक और रणनीतिक संचार को बढ़ाने के रास्ते पर चल सकते हैं या नहीं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
ये आवाजें हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की, जो अपने जैसे ही एक छात्र की पीट पीट कर हत्या किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। आरोप है कि अबरार फहद नाम के छात्र की इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए एक ऑनलाइन पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में उन्होंने भारत बांग्लादेश के बीच हुए समझौते पर गुस्सा जताया था, लेकिन उनकी हत्या के बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में छात्रों के प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा का कहना है,
हम अबरार के लिए न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हत्यारों को फांसी पर लटकाया जाए। हम चाहते हैं कि इस तरह की छात्र राजनीति बंद हो। सरकार अबरार के परिवार को मुआवजा दे। हम ये भी चाहते हैं कि सरकार हमारी जिंदगी में, छात्रों के जीवन में और अधिक प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका अदा करे।
प्रदर्शनकारी एक छात्रा। बांग्लादेश में जारी इस घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप मिश्र ने ढाका में मौजूद बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली से बात की।
पिछले हफ्ते अबरार फहद नाम के एक इंजीनियरिंग के छात्र की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई हॉस्टल में ही, और कहा यह जा रहा है कि उसकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने अभी जो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ समझौते हुए हैं उसके विरोध में पोस्ट लिखा था, और इस मामले में जितने भी लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं वो जो अवामी लीग बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी है उसका जो छात्र विंग है उसके लोगों की गिरफ्तारी है। तकरीबन 15 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इन दिनों में, और इसका कई आयाम है। एक आयाम तो ये है कि भारत के साथ जो समझौता है उसके मुखालफत की थी अबरार ने, और ये कहा था कि भारत ने जो है अभी पानी को लेकर जो समझौता किया है और जो गैस सप्लाई का समझौता किया है उसके बदले में बांग्लादेश को कुछ नहीं मिला। तीस्ता जैसे मामले पर जो है इतने दिनों से समझौता जो है वो टल रहा है, और अब बांग्लादेश जो है वो अपना पानी जो है वो भारत को देने को तैयार हो गया। उसी के बाद जो है ये मर्डर हो गया, और पिछले चार दिनों से न सिर्फ ढाका में बल्कि पूरे बांग्लादेश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और कई रैलियां निकल रही हैं ये, और कई तरह की मांगे उठाई जा रही हैं।
सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र विंग का इसमें नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर के जो वहां विपक्ष है उसकी ओर से क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो भी उसका भी आक्रामक रुख है इन प्रदर्शनों में, उनकी भी भूमिका नजर आ रही है?
विपक्ष का तो इतना आक्रामक रवैया इसलिए नहीं नजर आ रहा है कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी नेता है अभी जो पूर्व राष्ट्रपति है यहाँ की, वो फिलहाल खालदा जिया वो जेल में है और विपक्ष एक तरह से बिखरा हुआ है। लेकिन छात्रों का ही नहीं, जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से भी जो है उनका भी सपोर्ट है इस पूरे आंदोलन को लेकर। और आज जो बांग्लादेश में ढाका में संयुक्त राष्ट्र की जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने ये बात कही है कि बांग्लादेश में जो विपक्ष की आवाज है उसको जो इतने कम अवसर मिल रहे हैं अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, इसको लेके वो चिंतित है। तो ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, इसके पहले ऐसे बहुत सारे जो है वो मर्डर हो चुके हैं। उस पर किसी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है। कल जब शेख हसीना ने भारत से आने के बाद भारत से जो समझौते हुए हैं और उनकी यात्रा को लेकर, न्यूयॉर्क की यात्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उसमें भी उनसे ये सवाल पूछा गया, तो शेख हसीना ने कहा कि किसी भी तरह की हत्या जो है वो किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता, छात्र राजनीति का भी हिस्सा नहीं हो सकता, और जो भी शामिल पाया जाएगा इसमें उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया गया प्रधानमंत्री के सामने।
बांग्लादेश में हत्या के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, जानकारी दे रहे थे ढाका से बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। बांग्लादेश के बाद बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता और उसके परिवार के दो अन्य सदस्यों की हत्या का मामला सामने आने के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा रही है। इस खबर पर और जानकारी के लिए कुलदीप मिश्र ने कोलकाता में पत्रकार प्रभाकर एम से बात की।
ये घटना है मुर्शिदाबाद जिले में, जहां एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे बंधु प्रकाश पाल, उनकी पत्नी ब्यूटी पाल और आशा के बेटे अंगन पाल। तो उनकी विजयादशमी के दिन घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी, और अब तक 48 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन पुलिस को उनके हथियारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। और मोहल्ले के और पड़ोसियों का कहना है लोगों का कि वे लोग बहुत अच्छे आदमी थे और किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी। इस घटना से इलाके में काफी आतंक है। वो आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने दावा किया है कि वो हमारी बैठकों में नियमित रूप से आते थे।
क्या पुलिस अधिकारी इसे प्रथम दृष्टया राजनीतिक हिंसा का मामला मान रहे हैं, ऐसी कोई स्पष्टता है या किसी और कोण से भी जांच चल रही है?
मेरी बात हुई थी वहाँ पुलिस अधिकारी जो वरुण वैद्य जांच कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार हैं, तो उनका कहना है कि अब तक जो जांच हुई है इसमें कोई राजनीतिक एंगल उनको नजर नहीं आया है, और पुलिस अलग अलग पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है, इनमें निजी दुश्मनी है और बाकी उनकी गतिविधियां थी, लेकिन राजनीतिक एंगल अब तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा है इस बारे में कि राजनीतिक दुश्मनी है।
प्रदेश में इसको लेकर के क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया है?
बंगाल में इस पर राजनीति गर्म हो गई है। त्योहारों का सीजन होने के कारण मामला ठंडा था, उसके बाद जस्ट त्योहार अभी खत्म हुए और ये तीसरा हत्याकांड हो गया, तो इसके बाद राजनीति काफी गरमाने लगी है। खासकर बीजेपी के लोगों ने और संघ के लोगों ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल पैदा कर दिया है, और तो और इस मुद्दे पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य सरकार के बीच भी ठन गई है। राज्यपाल ने इस घटना को नारकीय बताया है, कड़े शब्दों में निंदा की है और सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी ओर इसी पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव तो संसदीय कार्य मंत्री भी है पार्थ चटर्जी, उन्होंने कहा है कि राज्यपाल की यह टिप्पणी उचित नहीं है, वे अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। अब तक ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा है और तृणमूल ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसलिए कोई टिप्पणी अभी करना ठीक नहीं है।
पश्चिम बंगाल में आरएसएस कार्यकर्ता की परिवार समेत हत्या, जानकारी दे रहे थे कोलकाता से प्रभाकर एम। और आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। कमलेश तैयार हैं, तमाम अखबार उनके हाथ में हैं।
संदीप जी, जो रिपोर्ट अभी हमने सुनाई है वही अखबारों में भी उस पर खबर है, जैसे कि नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि राज्यपाल और महिला आयोग ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है और पुलिस इसमें पैसे और संपत्ति के विवाद के बात भी कह रही है। इसके अलावा लगभग सभी अखबारों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की खबरें हैं। दोनों के बीच किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसे लेकर चीन और भारत के बयानों का विश्लेषण किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ममल्लापुरम में मुलाकात करेंगे। अखबार लिखता है कि इस दौरान परस्पर विश्वास बढ़ाने के तरीकों और व्यापार पर बातचीत होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि जीएसटी लागू करने के 2 साल बाद केंद्र सरकार अब तक की सबसे बड़ी समीक्षा शुरू करेगी। इसमें जीएसटी दरों में बदलाव और स्लैब की जांच होने की संभावना है। ये जो फैसला है ये केंद्रीय और राज्य अधिकारियों की एक 12 सदस्यीय समिति की एक रिपोर्ट के बाद किया जाएगा, और ये समिति बनाने का फैसला किया गया एक दिन पहले जब शुक्रवार को नरेंद्र मोदी जो हैं वो राज्य के मुख्य सचिवों से मुलाकात करेंगे।
और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक तस्वीर भी है जो ईरानी महिलाओं की, हमने विश्व समाचार में खबर दी थी उससे जुड़ी है, कि फुटबॉल मैच देखने पहुंची महिलाओं की तस्वीर इसमें दिखाई गई है जो ईरान का झंडा लहरा रही हैं और विक्ट्री का साइन बनाते हुए मुस्कुरा रही हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स की पहली खबर है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ गया है, पिछले 3 महीनों के सबसे खराब स्तर पर वीरवार को उसे आंका गया है। और इसका कारण बताया है कि हवा जो है वो धीमी हो गई है और आसपास के राज्यों में पराली जलने के कारण ऐसा हो रहा है। वहीं हिंदुस्तान अखबार खबर देता है कि फोर्टिस हेल्थ केयर और एनबेक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह को दिल्ली पुलिस ने वीरवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2,370 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में उन्हें और अन्य 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी अखबार में एक और खबर है कि भारत प्रशासित कश्मीर से धारा 370 के कुछ प्रावधान खत्म करने के 2 महीने बाद सैलानियों के लिए उसे खोल दिया गया है। ये पाबंदी 10 अक्टूबर को हटा ली गई है।
शुक्रिया कमलेश। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार और रैलियों का शोर बढ़ता जा रहा है। राज्य में चुनावी माहौल का जायजा लेने निकले BBC संवाददाता सलमान रावी नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली पहुंचे। कुलदीप मिश्र ने उनसे बात की और सबसे पहले गढ़चिरौली के माहौल के बारे में पूछा।
ये महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है गढ़चिरौली को, जहां जो मतदाता हैं उनकी संख्या 1.5 लाख से कुछ ऊपर है। पिछले विधानसभा के चुनाव में सबसे कमाल की बात ये हुई कि नोटा ने अपना जलवा दिखाया यहाँ पर, यानी कि ये समझ लीजिए कि तीसरे स्थान पर नोटा रहा, जबकि हालांकि BJP की जीत हुई थी, यहाँ BJP के जो कैंडिडेट थे वो जीते थे, लेकिन दूसरे नंबर पर NCP के जो कैंडिडेट थे भाग्यश्री अतराम, उनको 18,000 वोट मिले थे और सिर्फ 1,000 वोट से कम रह गए थे नोटा के वोट। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको तो नोटा से भी कम वोट मिले थे। तो आप इस बात का ये अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि लोगों के अंदर का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, जो ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ में कहीं ना कहीं मन के अंदर है लेकिन वो बोल नहीं पाते, तो उन्होंने वो वोट के रूप में नोटा को जो है वो किया था। अब हालात बहुत अच्छे नहीं हुए हैं पिछले 5 साल में कि कुछ बेहतर स्थिति हो गई हो। हमलों में भी तेजी आई है, नक्सल प्रभावित इलाके हैं। 1 मई को यहाँ पे बड़ा कांड हुआ था जिसमें बारूदी सुरंग का विस्फोट हुआ था और मुठभेड़ हुई थी जिसमें 16 जवान मारे गए थे सुरक्षा बलों के। तो जंगल के जो इलाके हैं, अंदरूनी इलाके हैं, वो कटे हुए हैं। अभी दूसरी कहर जो आई गढ़चिरौली के ऊपर वो आई बाढ़ की, इतनी बारिश हुई कि लगभग 200-250 गांव पूरे कटे रहे कई दिनों तक। हालांकि हम दावा करते हैं कि हर जगह बिजली पहुंच गई है लेकिन आज भी इलाके हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, जहां सड़कें नहीं है।
मुद्दे वहां अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो कौन से मुद्दे वहां हावी हैं?
देखिए, मुद्दे जिनको लेकर महाराष्ट्र चर्चा में हमेशा से रहा है और पिछले 5 सालों में भी रहा है, वो है किसानों के मुद्दे। आत्महत्याओं का जहां तक सवाल है तो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों की महाराष्ट्र से ही खबरें आती हैं। सूखा अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सूखा ग्रस्त इलाके जो हैं वो भी महाराष्ट्र के ही हैं, जहां पर जमीन के पानी का लेवल और नीचे जा चुका है, जहां पर खेती करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। किसानों की आवाजें दिल्ली की सड़कों पर सुनाई देती हैं महाराष्ट्र के, जिन लोगों ने जाकर दिल्ली में प्रदर्शन किया, क्या वो अपने गांव में भी जहां पर वो रहते हैं वहां भी उसी तरह की आवाजें मुखर होती हैं या नहीं? नासिक का मामला ले लीजिए आप, जहां पे प्याज के जो किसान थे उनका दिवालिया हो गया, उन लोगों ने अपनी फसलें जो है सड़कों पे डाल दी थी। दूसरी तरफ प्याज की कीमतें आसमान छू गई। ज्यादातर ये जो है खेती आधारित इलाका है महाराष्ट्र और खेती बहुत बुरी हालत में है, जिसको लोग घाटे का सौदा मानकर चलते हैं। लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो फिर ये सारे मुद्दे क्यों गौण हो जाते हैं, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि ऐन जब मतदान का वक्त आता है तो फिर ये सारे मुद्दे गौण होकर फिर वो जातीय समीकरणों पर बात आ जाती है और उसी तरह से फिर वोटिंग पैटर्न जो है देखने को मिलता है।
गढ़चिरौली महाराष्ट्र से ये थे BBC संवाददाता सलमान रावी। 21 अक्टूबर को भारत के एक और राज्य में विधानसभा चुनाव होगा और वो राज्य है हरियाणा। कभी आम आदमी पार्टी में रहे योगेंद्र यादव ने अब अपनी स्वराज इंडिया पार्टी के उम्मीदवारों को हरियाणा में 28 सीटों पर उतारा है। BBC संवाददाता नवदीप कौर ने चंडीगढ़ में पार्टी प्रमुख योगेंद्र यादव से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि क्या उनकी पार्टी को हरियाणा में सभी 90 सीटों के लिए उम्मीदवार नहीं मिले क्या?
दो दिक्कत रही। एक, इतने लोगों ने कहा भाई सब 2 नंबर का पैसा नहीं है, मैं कैसे पॉलिटिक्स में आऊँगा, साधारण मिडिल क्लास का व्यक्ति हूँ। हाँ, अगर आप 5-10 लाख रुपए कहीं से अरेंज कर दो तो हम इलेक्शन लड़ लेंगे। और 1 नंबर वाले लोग आना नहीं चाहते, 2 नंबर वालों को हम नहीं चाहते, क्योंकि हमने मर्यादा बनाई थी कि ऐसे लोगों को नहीं लेना है। और जो हम 90 में से 28 खड़े कर पाए उसकी एक प्रमुख वजह ये है कि हमने कहा कि नहीं, हर ऐरे गेरे के साथ हम डील नहीं करेंगे, हमारे अपने सिद्धांत हैं, कोई कम्युनल है, कास्टिस्ट है, करप्शन में है, क्रिमिनलिटी में है या करेक्टर खराब है, हम उसके साथ डील नहीं करेंगे।
आपको लगता है कि आप वोटर्स को जोड़ पाएंगे? 28 में से कितनी सीटें आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे या फिर किस तरह की टक्कर देंगे?
किसी ने मेरे से पूछा कि जी आप कहाँ हो, मैंने कहा हम तो जीरो पे हैं, हम यहाँ एक नई शुरुआत करने आए हैं। कोई नहीं बोलता था अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल पे हरियाणा में, दो महीने पहले तक कांग्रेस वाले मुंह नहीं खोलते थे, शराब के ठेकों के खिलाफ बोलने की आज भी किसी की हिम्मत नहीं है। स्वराज इंडिया अपने मैनिफेस्टो में कहता है कि हम ठेकाबंदी करेंगे, ये डेरे वाले बाबा के खिलाफ सारी पार्टियां उसके साथ जुड़ी हुई थी, स्वराज इंडिया ने कहा इसको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए।
जो बाकी पार्टियां हैं हरियाणा की सियासत में जो कंटेस्ट कर रही हैं, उनको कौन सी पार्टी को आप कहां देखते हैं?
हम तो बड़ा साधारण बात कहते हैं, निकम्मी सरकार, विपक्ष भी बेकार। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता से 5 साल पहले जो प्रमुख वायदे किए थे, कहा था प्रदेश में ऋण बहुत बढ़ गया है, 5 साल में डबल कर दिया इन लोगों ने। कहा था बेटी बचाओ, रेप 1.5 गुना हो गए, अपहरण 2 गुना हो गए। कहा था नशा कम करेंगे, शराब 1.5 गुना बिकने लग गई। कहा था किसान का 1-1 दाना खरीदेंगे, 1 भी साल 25% भी नहीं खरीदा इन्होंने। और कहा था बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, देश में नंबर 1 बेरोजगारी हरियाणा में है। अब सवाल ये है कि ऐसी पार्टी मुँह उठा के वोट कैसे मांग रही है? इसके लिए आपको हरियाणा के विपक्ष को श्रेय देना पड़ेगा, कांग्रेस को, इनेलो को, जेजेपी को, जिन लोगों ने विपक्ष को मजाक बना दिया है और कोई रोकने के लिए आ नहीं रहा।
स्वराज इंडिया पार्टी की योगेंद्र यादव से बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता नवदीप कौर। और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारत की एमसी मैरी कॉम ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 36 साल की मैरी कॉम ने क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की इंग्रिड वालेंसिया को 5-0 से मात दी। उन्होंने भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम का ये 8वां पदक होगा। उनके नाम पहले से ही विश्व चैंपियनशिप में 6 गोल्ड और 1 रजत के साथ सर्वाधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। और अब बात क्रिकेट की, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 273 रन था। विराट कोहली 63 और अजिंक्य रहाणे 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारतीय टीम के पहले बल्लेबाजी करने के फैसले पर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा कहते हैं,
हम पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे क्योंकि भारत में चौथी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा पिच से गेंदबाजों को टर्न मिलेगा। यहाँ की पिच काफी बढ़िया है, तेज गेंदबाज अगर यहाँ सधी हुई गेंदबाजी करे तो विकेट मिलता है। वहीं बल्लेबाजों के लिए भी अच्छे शॉट्स खेलने में मददगार है।
हालांकि भारतीय पारी की शुरुआत कल अच्छी नहीं रही। पिछले मैच की दोनों पारियों में शतकीय पारी खेलने वाले रोहित शर्मा केवल 14 रन ही बना सके और कगिसो रबाडा का शिकार हो गए। इसके बाद मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा ने दूसरे विकेट के लिए 138 रन जोड़े। पुजारा ने अपना विकेट 58 के निजी स्कोर पर गवाया। वहीं दूसरे छोर पर टिके मयंक अग्रवाल ने इस बीच अपना लगातार दूसरा शतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद वो भी 108 के निजी स्कोर पर रबाडा का शिकार बने। ये टेस्ट मैच विराट कोहली का बतौर कप्तान 50वां टेस्ट मैच है। वो ऐसा करने वाले भारत के दूसरे कप्तान हैं। उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए 50 से ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते मुख्य समाचार पुनः कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की के हमले के बाद सेना ने कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया है। तुर्की की सेना ने रास अलेन और तेल अबियाद के सीमावर्ती इलाकों को घेर लिया है। ईरान में 4 दशकों के बाद पहली बार महिलाओं को फुटबॉल मैच देखने की इजाज़त दी गई है। कंबोडिया और ईरान के बीच हो रहे मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएँ पहुँची थीं। आयरिश प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने कहा है कि अक्टूबर के अंत तक ब्रेक्जिट समझौता हो सकता है। लियो वराडकर ने उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ हुई बातचीत को बहुत सकारात्मक और आशाजनक बताया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कोलंबिया को वामपंथी गुरिल्लाओं को समाज में फिर से बसाने और सुरक्षा की गारंटी देने की जरूरत है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।